स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 10 दिसंबर दिन शनिवार, गेहूं पर आयात शुल्क खत्म, विपक्ष का जोरदार विरोध।
बड़े बड़े पूंजीपतियों धरना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया, किसानों के हित के लिए डिसीजन नहीं लिया है, इनको पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो किसानों का बड़ा भारी नुकसान होगा।
सरकार का दावा लोगों के हित में किया फैसला, लेकिन क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
गेहूं की बुआई अभी चल रही है, किसानों को हम एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज देंगे कि आप जो है कुछ भी करो, आप पैदा करो या मत करो, हमें गेहूं का आयात करके हम इस देश की जरूरत पूरी कर सकते हैं।
बस्तर से सलमान रवि की खास रिपोर्ट, और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। भारत सरकार ने गेहूं पर से आयात शुल्क हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे गेहूं का आयात बढ़ेगा और दाम कम होंगे। विपक्ष इस फैसले से नाराज है और विपक्ष ने तय किया कि इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में भी विपक्ष को घेरा था। सरकार का कहना है कि ये फैसला उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है और ये फैसला स्थायी नहीं है और आगे इसकी समीक्षा भी हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। त्यागी पर इटली की हेलीकॉप्टर कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड से पैसे लेने का आरोप है। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड से पैसे खाए और उन्हें भारत की तरफ से हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा करने में मदद की। हेलीकॉप्टरों का यह सौदा $55 करोड़ का था। इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें त्यागी के रिश्तेदार भी शामिल हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर में लड़ाई अब भी जारी है, जहां सीरिया की सरकारी सेना लगातार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। जमीनी हमले के साथ साथ विमान और हेलीकॉप्टरों से भी हमले किए जा रहे हैं और सीरियाई सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सब कुछ योजना के तहत हो रहा है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि पिछले 4 घंटों में 10,000 से अधिक आम नागरिक इस इलाके से निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सैकड़ों लोग सीरिया सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में आने के बाद गायब हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ का कहना था, मैंने कभी नहीं कहा कि लड़ाई पूरी तरह से रोक दी जाएगी। मैंने कहा था कि लड़ाई रोकी गई है ताकि वो आम नागरिक शहर छोड़ सकें जो छोड़ना चाहते हैं, और इन मानवीय रुकावटों के बाद संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि बागी लोग पूर्वी अलेप्पो छोड़ न दें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनावों के लिए साइबर हमलों के मामले की समीक्षा के आदेश दिए हैं। चुनावों के दौरान साइबर हमलों का मामला जोर शोर से उठा था और इसके पीछे रूस का नाम भी आया था। इन हमलों में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के ईमेल सार्वजनिक कर दिए गए थे। अक्टूबर महीने में अमरीकी अधिकारियों ने इसके पीछे रूस का हाथ होने के संकेत दिए थे और कहा था कि रूस अमरीकी चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। रूपर्ट मर्डोक के नियंत्रण वाले मीडिया की जानी मानी कंपनी 21st Century Fox ने यूरोप के सबसे बड़े पे टीवी ऑपरेटरों में से एक स्काई को खरीदने के लिए अनौपचारिक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के बाद स्काई के शेयर नाटकीय रूप से बढ़े हैं। कंपनी ने स्काई की कीमत $20 अरब लगाई है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी के एक और अधिकारी को अपने प्रशासन में शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि प्रचार अभियान के दौरान वो गोल्डमैन सैक्स बैंक की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। गोल्डमैन के प्रेसिडेंट गैरी कोहेन व्हाइट हाउस की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की अगुवाई करेंगे। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 10 तारीख और दिन शनिवार। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। नोटबंदी के मामले पर हमले पहले से ही विपक्ष के हमले झेल रही मोदी सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क खत्म करने का फैसला कर दिया। फिर क्या था, सारा विपक्ष सरकार पर जैसे चारों तरफ से टूट पड़ा। कांग्रेस से लेकर वामपंथी तक और मुलायम से लेकर मायावती तक सब ने एक सिरे से इस फैसले का विरोध किया। सरकार इसे लोगों के हित में उठाया गया कदम बता रही है तो विपक्षी इसे किसान विरोधी कहते हैं। सुनिए सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
गेहूं और आटे की कीमत बढ़ने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं से आयात शुल्क हटाने का फैसला किया और विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मुद्दा मिल गया। गेहूं पर अब तक 10% आयात शुल्क लगता था। सरकार के फैसले के बाद अब गेहूं के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्यसभा में कल इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर हमलावर रहे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा,
इस तरीके का कदम जो सरकार उठाया वो हमारे देश के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। ये एक
येचुरी जी,
ये देशद्रोही
जी
और ये आप स्वीकार करना।
कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस का तर्क था कि फिलहाल किसान गेहूं बो रहे हैं, आयात शुल्क हटाने से उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि सरकार ने ये फैसला पूंजीपतियों के हित में लिया है।
जल्दबाजी में ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों धरना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया, किसानों के हित के लिए डिसीजन नहीं लिया है। सरकार की जिम्मेवारी बनते ये जो फैसला लिया है, और सभापति जी जो आपने कहा कि सरकार को जामिन करना चाहिए,
पासवान जी, पासवान जी,
जामिन करके दोबारा इसको पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो किसानों का बड़ा भारी नुकसान होगा।
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कीमतों में इजाफा ना हो इसके लिए फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उपभोक्ताओं का हित है।
हमारे पास में गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुनिए, उपभोक्ता मंत्री की हैसियत से हम कहना चाहते हैं कि जब भी किसी चीज का दाम बढ़ता है अपोजिशन के तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो गेहूं की कमी नहीं है लेकिन गेहूं के दाम में कुछ वृद्धि के आसार होने लगे हैं, और इसलिए एहाती तौर पर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने ये फैसला लिया है, और ये फैसला कोई परमानेंट नहीं
है। सरकार का दावा है कि ये फैसला स्थायी नहीं है, आगे इसमें बदलाव भी हो सकता है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावे से सहमत नहीं है और ये दोनों पक्षों के बीच टकराव का नया मुद्दा बन गया है।
तो जैसा कि सुशीला सिंह की इस रिपोर्ट में आपने अभी सुना कि सरकार ये कह रही है कि आयात शुल्क हटाने का फैसला अस्थाई नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में विपक्ष के तेवर इस कदर क्यों कड़े हैं। इसी को समझने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री अजीत सिंह से बात की।
देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी पहले तो इन्होंने 30% से घटा के 10% की, 30% थी पहले, एक दो महीने पहले ही कम की थी, और अब उन्होंने घटा के उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। मिनिस्टर साहब ने भी राज्यसभा में कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, तो इसका मुझे समझ नहीं आता आप क्यों बाहर से इम्पोर्ट करने चाहते हो गेहूं। ये सरकार टोटली किसान विरोधी है। MSP धान के लिए 1470 रुपए है। उत्तर प्रदेश में किसान आज नहीं पिछले दो महीने से धान बेच रहा है 800-1100 पे, क्योंकि कोई क्रय केंद्र नहीं खोले गए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस गवर्नमेंट इज सपोज टू बाई ऑल व्हाट एवर इज ऑफर्ड, ये सरकार वो काम नहीं कर रही है। इसमें प्रदेश सरकार की भी गलती हो सकती है। यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है, चीनी पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ये बढ़ा दी है जिससे कि ये एक्सपोर्ट ना कर पाए, तो दोनों में किसानों के नुकसान का ही मकसद मुझे नजर आता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम कम है, और अगर ये ड्यूटी खत्म कर देंगे तो खासतौर में साउथ में जो कंजम्पशन होता है उनके लिए इम्पोर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा, और फिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर ये ऑलरेडी जैसा मैंने कहा धान को भी नहीं खरीद रहे हैं, तो गेहूं को भी नहीं खरीदने का कोई इंतजाम करेंगे, और उसका दाम MSP से भी कम हो जाएगा।
सरकार का एक तर्क है कि उपभोक्ताओं के फायदे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन किसानों की स्थिति क्या होगी इस फैसले के बाद?
देखिए, किसान की हालत ऐसी बहुत खराब है, जैसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बहुत पूरे देश भर में गन्ना किसान को अभी तक भी पिछले साल का दाम नहीं मिला है। पिछले चार साल में उत्तर प्रदेश में MSP 280 से बढ़ा के सिर्फ 310 की गई है। 3-4 साल से दाम नहीं बढ़ा है गन्ने का किसानों के लिए, जबकि लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, और इस डिमोनेटाइजेशन में जब पैसा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ना मंडी में कोई उसकी फसल खरीद रहा है, ना उसको बीज मिल रहे हैं, ना खाद मिल रही है, तो इस समय जब आप ये और मार डालना चाहते हो किसानों पे, और अगर आप मालूम करना चाहें बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। अभी स्टील यूटेंसिल्स के बारे में मैं कहीं देख रहा था, उसमें सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है जिससे कि यहाँ के दाम आगे बढ़ते रहे, तो उसमें क्या कंज्यूमर्स का नुकसान नहीं है?
उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, सरकार के इन फैसलों का क्या चुनाव से भी आप कोई संबंध देखते हैं?
किसान तो ऑलरेडी सरकार के फैसलों से बहुत परेशान है। अभी एक दो महीने पहले प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में दावा किया था कि उन्होंने किसानों को गन्ने का दाम सिर्फ 700 करोड़ बाकी है, बाकी सब दाम उन्होंने दिला दिया है। दूसरे दिन अखबार में सरकारी आंकड़े आए कि 4000 करोड़ से ज्यादा बाकी है। और अब फिर आप गेहूं की आज इन्होंने किया ही है जो, और ऐसे भी भाजपा का चुनावी मुद्दा तो खुद भाजपा की जो मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में नेशनल कार्यकर समिति की, उसमें उन्होंने का उनका मुद्दा तो कैराना से पलायन है।
ये थे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री अजीत सिंह। ये तो बात हुई राजनीतिक दलों की, लेकिन सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ? हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने कृषि मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह से बात की और सबसे पहले पूछा कि वो सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं।
देखिए, ये बहुत ही बड़ा झटका है देश के किसानों के लिए, क्योंकि 1966 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था, किसानों को पहली बार ड्वार्फ वैरायटी के सीड मिले थे गेहूं के, और उसने हमें देश को आत्मनिर्भर बनाया था खाद्यान्न उत्पादन में। आज 50वां साल है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और उसमें हम लोग आयात पर निर्भर बना रहे हैं देश को, क्योंकि अगर शुल्क मुक्त आयात आप देश में गेहूं का करेंगे, गेहूं की बुआई अभी चल रही है, किसानों को हम एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज देंगे कि आप जो है कुछ भी करो, आप पैदा करो या मत करो, हमें गेहूं का आयात करके हम देश की जरूरत पूरी कर सकते हैं।
जो अभी नोटबंदी का जो फैसला है उससे जोड़ के तो इसको नहीं देखना है आप लोग?
बिल्कुल, नोटबंदी से जिसे जोड़ करके हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दो साल के बाद इतना बेहतर मानसून आया था, सामान्य मानसून था, जमीन में अच्छा मॉइस्चर है, सर्दियां समय से आई है, 10 से 11 डिग्री का टेम्परेचर जो फसल के लिए उम्दा होता है जर्मिनेशन के लिए, वो है, किसानों को बम्पर क्रॉप मिल सकती थी। लेकिन सरकार एक तरह से कंफ्यूज्ड है, इसने कहा पिछले साल 9.35 करोड़ टन गेहूं का देश में उत्पादन हुआ, जो रिकॉर्ड से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन जिस तरह से सरकारी खरीद पिछले साल से करीब 50 लाख टन कम रही, सरकार का जो लक्ष्य था उससे 70 लाख टन कम रही, उसमें लगता है कि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए थे देश में गेहूं उत्पादन के, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, उसमें गलतियां थी, और इसी का नतीजा है कि जब प्रोक्योरमेंट सीजन में गेहूं का MSP 1525 रुपए था, उसके मुकाबले अभी दिल्ली में दाम 2300 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गया है और कीमतें नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जो पहले आंकड़े थे वो गलत आंकड़े थे, और उस वक्त उन्होंने नहीं देखा कि हमें देश में कितने गेहूं की दरकार है, ये एक बड़ी चिंता की बात है सरकार के मोर्चे पर।
ये थे कृषि मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह।
BBC इंडिया बोल।
नोटबंदी पर अब सरकार का तर्क है कि इसका मकसद देश को कैशलेस यानी नकद विहीन व्यवस्था की ओर ले जाना है। सरकार प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट और ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष का तर्क है कि जिस देश में 80% लोग नकदी पर निर्भर हैं, वहां ये व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती। सवाल ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अपनी राय जाहिर कीजिए BBC इंडिया बोल में, शनिवार 10 दिसंबर शाम 7:30 बजे। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो BBC इंडिया बोल में आपके शामिल होने का हमें रहेगा इंतज़ार। कार्यक्रम होगा आज शाम 7:30 बजे। और अब एक विशेष सूचना, BBC हिंदी 12 दिसंबर 2016 से अपने कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल करने जा रही है। ये BBC के श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचने की हमारी लगातार चल रही कोशिशों का हिस्सा है और नए प्लेटफॉर्म्स पर अपने पाठकों और श्रोताओं को बेहतरीन सेवा मुहैया करवाना इसका मकसद है। इस सिलसिले में BBC हिंदी सुबह और शाम के दूसरे प्रसारणों को बंद कर रहा है, यानी सुबह 8 से 8:30 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विश्व भारती और शाम को 9:30 से 10:00 बजे तक प्रसारित होने वाला घटना चक्र कार्यक्रम अब प्रसारित नहीं किए जाएंगे। लेकिन सुबह 6:30 से 7:00 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम नमस्कार भारत, जो कि अभी आप सुन रहे हैं, और शाम 7:30 से 8:00 बजे तक वाला कार्यक्रम दिन भर पहले की तरह प्रसारित किए जाते रहेंगे। भारत में रेडियो बीबीसी के ऑपरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ मानदंडों के मुताबिक रेडियो पर अपने श्रोताओं की सेवा करते रहेंगे। ऑडियंस की सेवा करने के इसी वचन को ध्यान में रखते हुए भारत में बीबीसी का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर मराठी, पंजाबी, गुजराती और तेलुगु भाषा सेवाएं शुरू की जाएंगी। हम हमेशा की तरह अपने श्रोताओं और पाठकों के लिए हम हमेशा की तरह अपने श्रोताओं और पाठकों के प्रति समर्पित हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का और मेरे साथी सुशील झा तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताएं सुशील।
दो खबरें जो हर अखबार में है वो हैं, पूर्व सेना वायुसेना अध्यक्ष की जो गिरफ्तारी हुई है वो है, लेकिन मैं छोटी छोटी खबरें कुछ अखबार से दिखाता हूँ। दैनिक जागरण की एक खबर है, एक्सिस बैंक ने काले से सफ़ेद किए 100 करोड़। चांदनी चौक शाखा में आयकर का छापा पड़ा और उसमें से ये सूचना मिली कि 37 लाख की नई और पुरानी करेंसियाँ बरामद की गई है और कई लोग वहाँ पर काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है साहब नोटबंदी के मामले में सरकार से कि आपने देश को हिला कर रख दिया, क्या ये मतलब आपके विम्स एंड फैंसिस पे चल रहा था। अमर उजाला ने हेडिंग लगाई है, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने देश को हिला कर रख दिया। ये खबर कई जगह पे है। नोटबंदी के खिलाफ जो वकील अपील कर रहे हैं, जो पिटिशन हैं, उसमें कपिल सिब्बल भी हैं और उन्होंने कहा है कि जो 24,000 रुपये की सीमा तय की गई थी, बैंक उतना पैसा भी क्यों नहीं दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जो नोटबंदी से जुड़ी हुई है कि नवंबर 8 को जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे, उस दिन दिल्ली की एक सोने की दुकान से 75 करोड़ कैश की खरीदारी हुई थी।
बाप रे बाप।
तो आप समझ लीजिए कि ये आशुतोष भारद्वाज की रिपोर्ट है, एंकर स्टोरी है, बहुत ही मजेदार ये मुझे लगी कहानी। दूसरा एक पोल ही अखिलेश गवर्नमेंट वांट्स ओन टीवी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण में कई सारी पार्टियों के अपने अपने टीवी चैनल हैं, तो कहा जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव भी अपना चुनाव से पहले अपना खोल सकते हैं साहब। नेशनल एंथम को लेकर एक अपील फिर से हुई थी कि क्या जो फिल्म फेस्ट हो रहा है उसमें अगर बार बार जो फिल्में दिखाई जाएंगी तो क्या हर फिल्म से पहले बजाना ज़रूरी है और वहाँ पर विदेशी गेस्ट भी होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब अगर 40 बार भी खड़ा होना पड़े सुप्रीम नेशनल एंथम के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा और विदेशी लोगों की आप चिंता ना करें, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि विदेशी लोगों को इससे कोई आपत्ति होगी अगर उनको खड़ा होना पड़े तो। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की नई जेल वैंस थी उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, जबकि ये जेल वैंस स्पेशली बनाए गए थे ताकि जो गैंगवार्स होती हैं लोगों को कैदियों को लाते और ले जाते समय उसको रोकने के लिए जेल वैंस बन गई हैं, वो यूज़ भी लेकिन वो यूज़ में एक भी नहीं आई हैं। विजय मलिक को आप जानते होंगे जो कि अभी भारत से फरार हो चुके हैं, तो उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और उनके बैंक अकाउंट नंबर और कई सारी और डिटेल्स ट्विटर पर डाली जा रही, तो उन्होंने कहा है कि साहब ये ट्विटर हमारा हैक हो गया, ये उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक और सवाल पूछा है कि सीबीआई के जो डिप्यूटी प्रमुख हैं उसको अचानक से सरकार ने क्यों हटाया है। इसको लेकर पहले भी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्ति कर चुके हैं कि साहब इस पे प्रधानमंत्री को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी और तब अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, तो डिप्टी चीफ को हटा दिया गया और फिर किसी और को अधिकारी बना दिया गया, तो ये मामला भी अखबारों में छाया है। एक आखिरी खबर लेना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, लॉन्ग बैक वीकेंड सेट टू वर्सन कैश क्रंच, मतलब बैंकों की कतारें फिर से लंबी होगी क्योंकि अब आने वाले हफ्ते में छुट्टियां पड़ेंगी तो बैंक बंद रहेंगे, तो एटीएम के बाहर की कतारें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये आगे अभी
कतारें। मैं बता दूं आपको, मेरे पास भी पैसे नहीं है प्रोग्राम खत्म होने के बाद,
आप मुझसे ले सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो।
चलिए तो बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया इस पेशकश का और अखबारों की समीक्षा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर इलाकों में रहने वाले खुद को सरकार, विजिलांटे गुट और माओवादियों के बीच फंसा हुआ पा रहे हैं। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बस्तर आने जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी। पिछले 3 सालों में बस्तर के हालात ऐसे हो गए हैं जब नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े लोग भी सरकार के रवैये की आलोचना कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पिछले दिनों बस्तर के दौरे पर थे। पेश है उनकी ये बस्तर डायरी।
अक्टूबर माह में बस्तर के सुकमा से लगे उड़ीसा के मलकानगिरी के इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 24 माओवादी छापामारों की मौत के बाद क्रांतिकारी कवि गदर कुछ इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना के बाद बस्तर के हालात और भी खराब होते चले जा रहे हैं। आक्रामकता बढ़ती जा रही है, सुरक्षा बल भी आक्रामक हैं तो माओवादी भी, और इसका असर बस्तर पर कैसा पड़ रहा है खुद लोग बताते हैं।
ये भाई साहब क्या बाजार में सिर्फ इतनी भीड़ थी?
पहले के अपेक्षा अभी हिचकिचाते हैं।
क्यों हिचकिचाते हैं?
हाँ अभी है दिक्कत।
किस तरह की दिक्कतें आती हैं लोगों को?
क्या बताएं, क्या
बताइए, हम तो बाहर से हैं, हमें तो पता नहीं है।
बाहर से फिर भी तो रिपोर्ट लिखाओगे वहीं पे टीवी में ही ना।
ना, ना, तो हाँ। ना इसमें चेहरा आ रहा है, रेडियो चेहरा नहीं आएगा, इसलिए बता सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं
क्या बताएंगे, वही है सब, आप सब समझ रहे हो फिर और क्या।
3 साल के बाद मुझे बस्तर जाने का मौका मिला, मगर 3 सालों में यहाँ काफी कुछ बदला सा नजर आने लगा। मैंने यहाँ वो दौर भी देखा था जब माओवादियों की जनताना सरकार का प्रभाव पूरे दंडकारण्य के इलाके में था। मैंने वो दौर भी देखा था जब यहाँ सलवा जुडूम अपने पूरे शबाब पर था, मगर इस बार जो हालात पैदा हुए हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं।
जी, वो तो नक्सली भी आते हैं सर, हम लोगों को तो दोनों साइड से परेशानी लगा, तो नक्सली भी अमीरों को मारता है, पुलिस भी अमीरों को है, थोड़ा सा हम लोगों को भी सोच में अलग लगा।
सुदूर इलाकों में मिलने वाले लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी आवाजाही बिल्कुल सीमित रखूं। सड़कों पर हथियारबंद समूह जो खुद को कानून का रखवाला बताते हैं, तो जंगल में हथियार बंद दस्ते और बारूदी सुरंगों का खौफ।
ये बारूद है सर?
ये बारूद है पूरा, ये 25 किलो, ये 25 किलो का ज्यादा है।
जैसे जैसे मेरा सफर आगे बढ़ता गया बस्तर की बड़ी तस्वीर दिमाग में खिंचने लगी। पहुंचते पहुंचते पुराने परिचितों ने खुद को किनारा करना शुरू कर दिया, लोग मेरे साथ दिखना नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि मैं तो दिल्ली वापस चला जाऊंगा, मगर उन्हें तो बस्तर में ही रहना है। अगर मेरी कोई रिपोर्ट सरकारी लोगों को बुरी लगी तो ये मेरे परिचितों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पुलिस प्रशासन में मेरे परिचितों ने भी मुझसे नहीं मिलना ही पसंद किया। इंसाफ खींची हुई लकीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए, सवाल माओवादियों पर और सरकार पर भी। सलमान रावी, BBC, बस्तर।
तो बस्तर से सलमान रावी अपनी डायरी सुना रहे थे। अभी अखबारों की समीक्षा के दौरान आपने सुना कि हमारे साथी सुशील कह रहे थे कि भारतीय कारोबारी विजय माल्या का ट्विटर हैक हो गया था, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर इसी से जुड़ी कि अमरीकी चुनाव के दौरान भी हैकिंग को लेकर बहुत बवाल उठा था और उस पर अब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शायद जाँच के आदेश दिए। क्या मामला है पूरा सुशील बताएं?
इकबाल, वो जो ट्विटर की हैकिंग है वो एक अलग है और उसी हैकिंग थोड़ा सा अलग मामला है। जब चुनाव चल रहे थे अमरीका में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन थी, तो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हिलरी क्लिंटन के कुछ ईमेल सार्वजनिक हो गए थे और उससे उनके कैंपेन को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो उसमें ये बात सामने आ रही थी कि भाई इसमें रशिया का हाथ है, कि रशिया के हैकरों ने ईमेल हैक कर लिए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और मज़ेदार बात ये थी कि उस जब ये ईमेल्स हैक होकर सामने आए थे लोगों के, उससे कुछ दिन पहले ही ट्रंप बार बार कह रहे थे कि रशिया को तो हैक कर लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हिलरी के ईमेल्स में क्या है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनके संबंध भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं,
तो उसको लेकर एक बहुत
चुनावी मुद्दा भी था,
चुनावी मुद्दा, तो वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था मुद्दा। तो अब उसकी समीक्षा के आदेश दिए हैं, जाँच तो नहीं होगी लेकिन समीक्षा होगी कि उस पर जो भी मटेरियल है वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। और वो रिपोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 20 जनवरी से पहले ही सबमिट होनी है राष्ट्रपति बराक ओबामा को, क्योंकि ताकि बराक ओबामा के टेन्योर में ही ये समीक्षा हो जाए। लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जब समीक्षा की रिपोर्ट आएगी तो वो आम लोगों के लिए दी जाएगी या नहीं देगी, इस पे अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि रूस ने डिनाई किया कि साहब हमारे इसमें कोई हाथ नहीं।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जो टाइम पत्रिका है, जब उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया तो उन्होंने बातचीत में दौरान ये बात कही कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रूस ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया होगा, और उन्होंने कहा कि वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए, और अब वक्त हो चला है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल भारत ने एक विकेट खोकर 146 रन बना लिए थे। स्टंप के समय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय 70 और चेतेश्वर पुजारा 47 रन बनाकर खेल रहे थे। केएल राहुल 24 रन बनाकर मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हुए। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा दूसरे विकेट के लिए अभी तक 107 रनों की नाबाद साझेदारी कर चुके हैं। इससे पहले कल इंग्लैंड की पूरी पारी 400 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। सलामी बल्लेबाज और अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे कीटन जेनिक्स के 112 रनों के अलावा इंग्लैंड के जॉस बटलर के 76, मोइन अली के 50 और जैक बॉल के 31 रनों की पारी शानदार रही। जॉस बटलर ने जैक बॉल के साथ मिलकर 9वे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। भारत के आर अश्विन सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, उन्होंने 112 रन देकर 6 और खब्बू स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 109 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और जयंत यादव को कोई विकेट नहीं मिला। पहली पारी के आधार पर भारत इंग्लैंड से अभी भी 254 रन पीछे है और उसके 9 विकेट बाकी है। अभी तक के खेल की समीक्षा की भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने।
मेरे ख्याल से इस समय हम बेहद मजबूत स्थिति में हैं। पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करते हुए वो भाग्यशाली रहे। हम उन्हें 375 रन पर आउट कर सकते थे, लेकिन दिन की समाप्ति पर एक विकेट पर 150 रन बनाकर हम भी अच्छी जगह हैं।
पार्थिव पटेल के शब्द। उधर ऑस्ट्रेलिया ने मेलबोर्न में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 117 रन से करारी मात दी। जीत के लिए 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी न्यूजीलैंड की टीम 36.1 ओवर में ही 147 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर की 156 रनों की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से एक तरफा रूप से अपने नाम की। वहीं भारत के पी कश्यप कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने छठी वरीयता हासिल कोरिया के जियोन योक जिन को 18-21, 21-8, 21-16 से हराया। इसके अलावा भारत ने जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में जोरदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मुकाबले में पूल डी में कनाडा को 4-0 से हराया। आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा।
तो खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त, और समाचारों में आपने सुना था कि वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष एसपी त्यागी को भ्रष्टाचार के एक मामले में कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भारत के एक और पूर्व एयर मार्शल रहे हैं प्रताप चंद्र लाल, जिनका 1971 के भारत पाक युद्ध में बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की उस जीत में उनको याद करेंगे रेहान फजल विवेचना में, लेकिन वो होगा अगले कार्यक्रम में। तो इंतजार करिए अगले कार्यक्रम का, और चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने गेहूं पर से आयात शुल्क हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे गेहूं का आयात बढ़ेगा और दाम कम होंगे। विपक्ष इस फैसले से नाराज है और विपक्ष ने तय किया है कि इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीरिया के अलेप्पो शहर में लड़ाई अब भी जारी है, जहां सीरिया की सरकारी सेना लगातार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनावों के दौरान साइबर हमलों के मामले की समीक्षा के आदेश दिए हैं। चुनावों के दौरान साइबर हमलों का मामला जोर शोर से उठा था और इसके पीछे रूस का नाम भी आया था। रूपर्ट मर्डोक के नियंत्रण वाली मीडिया की जानी मानी कंपनी 21st Century Fox ने यूरोप के सबसे बड़े पे टीवी ऑपरेटरों में से एक स्काई को खरीदने का अनौपचारिक प्रस्ताव रखा है। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी के एक और अधिकारी को अपने प्रशासन में शामिल किया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।